अब आगे, अरमान भले ही कितना ही नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आस्था, जो अब नॉर्मल होने का दिखावा कर रही थी, अंदर ही अंदर पूरी तरह से कांप रही थी। जल्दी ही अरमान ने आस्था को अपनी बाहों में उठा लिया और सीधा बाथरूम में ले आया। आस्था अरमान को रोकना चाहती थी, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं कर पाई कि वो अरमान को मना कर सके, और वो चुपचाप एक डॉल की तरह अरमान की बातें मानती रही। जल्दी ही अरमान ने आस्था को उसके कपड़ों से पूरी तरह से आज़ाद कर दिया और खुद आस्था को बड़े ही जेंटल वे में नहलाने लगा। आस्था को ऐसा लग रहा था मानो वो एक छोटी सी बच्ची हो जिसके साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव किया जा सकता हो, और अरमान आस्था को इस तरह ट्रीट कर रहा था मानो आस्था एकदम कांच की गुड़िया हो, अगर थोड़ा सा भी उसे हिलाया डुलाया जाए तो वो टूटकर चकनाचूर हो जाएगी। आस्था बिना अरमान को मना किए चुपचाप आंखें बंद किए बैठी रही। वहीं अरमान ने जैसे ही ये देखा कि आस्था ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, तुरंत ही उसके हाथ जो आस्था की पीठ पर चल रहे थे रुक गए। उसने तुरंत आस्था को गौर से देखना शुरू किया। अब आस्था ने देखा कि अरमान उसे छू नहीं रहा है, तो वो हैरानी से आंखें खोलकर अरमान को देखने लगी, और जैसे ही उसकी नज़र अरमान पर पड़ी तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि अरमान की आंखों में एकदम रेड ब्लड शॉट सा हुआ पड़ा था। बेहद खतरनाक उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। आस्था जो नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, नॉर्मल होने का बर्ताव दिखावा कर रही थी, अचानक अरमान की आंखें देखने के बाद चीख पड़ी और डर के मारे उसके शरीर का एक एक अंग कांप रहा था। तब अरमान ने उसके बालों को कसकर पकड़ा और डेंजरस वॉइस में बोला, जब मैं आपको छू रहा हूं तो आपको इस तरह से अपनी आंखें नहीं बंद करनी चाहिए थी वाइफी, और क्या आपको मेरा छूना पसंद नहीं आया? जैसे ही अरमान ने अपनी लाल आंखों के साथ आस्था से ये सवाल किया, आस्था जल्दी से घबरा कर बोली, नहीं 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 नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं और कैसे बातें कर रहे हैं? अब आस्था घबरा रही थी, उसकी जुबान उसका साथ ही नहीं दे रही थी, और वो आगे धीमी आवाज में बोली, आप कैसे बातें कर रहे हैं, हम तो बस आंखें बंद करके रिलैक्स फील करना चाहते थे। आपका छूना हमें बेहद पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा बोलकर आस्था अरमान को यकीन दिलाने लगी। तभी अरमान ने आस्था की बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया और आस्था के होठों को जल्दी ही अपनी गिरफ्त में ले लिया। हालांकि पहले वो सिर्फ और सिर्फ आस्था को नहलाना चाहता था, लेकिन अब आस्था का बदन जो पूरी तरह से कांप रहा था उसे वो देख चुका था, इसीलिए आस्था को शांत करने के लिए वो बड़े ही सॉफ्टली किस करने लगा। वहीं दूसरी ओर पूरा का पूरा परिवार इस वक्त हॉल में जमा था और सभी लोग बेचैनी से सीढ़ियों की ओर देख रहे थे कि अरमान और आस्था शायद दोनों ही आ जाएं। वहीं नानी माँ की आंखें पूरी तरह से बेचैन हो रखी थीं, वो अपनी आस्था को हर हाल में सही सलामत देखना चाहती थी। नानी माँ कुछ ना कुछ बड़बड़ाया करती थीं, लेकिन आज वो पूरी तरह से खामोश बैठी थीं। नानी माँ की खामोशी सभी लोगों ने अच्छी तरह से महसूस कर ली थी, लेकिन शायद वो भी जानते थे कि नानी माँ के इस तरह से खामोश होने की क्या वजह है। आखिरकार उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो वो भला कैसे आज सब कुछ भूलकर सबके साथ नॉर्मल बर्ताव कर सकती थी। वेल, प्रियंका जो कि आराम से नहा धोकर तैयार होकर एक बार फिर से हॉल में मौजूद थी, सबके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। सबकी शक्लों को देख रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, इन लोगों को आखिरकार हुआ क्या है? क्या इन लोगों को आस्था के अलावा कोई दिखाई नहीं देता क्या? कैसे इन लोगों ने अपने चेहरे पर 12 बजाए हुए हैं? ये आस्था की बच्ची तो बड़ी कमाल की निकली, किस तरह से पूरे परिवार को अपनी उंगलियों पर नचाए फिरती रहती है। लेकिन फिक्र मत कर, बहुत जल्दी सब कुछ मेरा होगा। कहीं ना कहीं प्रियंका अभी भी अपनी गलतफहमी में जी रही थी, लेकिन अपना मुंह नहीं बना रही थी, क्योंकि वो जानती थी उसके प्यारी दादी माँ की नजरें 24 घंटे उस पर ही रहती हैं, और दादी माँ उसे पहले ही धमकी दे चुकी हैं कि अगर उसने अब कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो दादी माँ सीधा उसका पार्सल करवा देंगी। तो इसीलिए अब प्रियंका कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी कि वो नानी माँ की नजरों में आए। वेल, तभी आहान ने दादाजी की ओर देखकर कहा, दादाजी, बाकी के फंक्शन हम बेहद साधारण तरीके से करेंगे। जैसे ही आहान ने ये कहा, ध्रुव, आकाश सुमित उसकी ओर देखने लगे। कोई और भी था जो आहान को देख रहा था, वो टाइगर और मारिया, जिन्हें शुरू से इस फंक्शन में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि टाइगर मारिया से शादी करना चाहता था, मारिया भी टाइगर से शादी करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से उनके किंग की लाइफ में मुश्किलें चल रही थीं, अबीर सिंह राठौर बार बार उनकी लाइफ में मुश्किलें क्रिएट कर रहा था, तो इस वजह से वो लोग इस वक्त बिल्कुल भी शादी करने के मूड में नहीं थे। उनका इरादा तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अबीर सिंह राठौर को जड़ से मिटा देने का था, लेकिन अरमान ने अबीर सिंह राठौर के पिता को प्रॉमिस किया था कि वो अबीर की जान नहीं लेगा।
अपने वादे के चलते अरमान के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए थे। अरमान सिंघानिया अपनी जान तो दे सकता था, लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ सकता था। ये बात उसका पूरा परिवार जानता था, इसीलिए कोई भी बिना अरमान की इजाजत के अबीर की जान नहीं ले सकते थे। लेकिन अबीर की इस तरह से हिम्मत काफी बढ़ती जा रही थी। जिस तरह से अबीर सिंघानिया मेंशन की सिक्योरिटी को अपने कब्जे में लेकर मेंशन के अंदर आ गया था, तो ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि आकाश ने उस वक्त सारी सिक्योरिटी को चेंज कर दिया था और डेविल किंग की सिक्योरिटी से रिप्लेस कर दिया था। फार्म हाउस की डेविल किंग की सिक्योरिटी इस वक्त सिंघानिया मेंशन में थी। तभी रश्मि अपनी छोटे छोटे कदम लेकर आहान ध्रुव के पास आती है और उन दोनों की ओर देखकर इमोशनल होते हुए बोलती है, आहान ध्रुव, मुझे लगता है कि हमें अभी शादी का आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। हालांकि रश्मि खुद डेस्परेटली आकाश से शादी करना चाहती थी और राधिका भी, लेकिन इस वक्त घर की सिचुएशन अच्छी तरह से समझ में आ रही थी और वो शादी का फंक्शन बड़े ही खुशनुमा माहौल में सेलिब्रेट करना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से चारों तरफ सिर्फ उदासी और मायूसी छाई हुई थी, तो इसलिए रश्मि का दिल भी अब शादी करने से इनकार कर रहा था। रश्मि की बात सुनकर राधिका भी रश्मि के हाँ में हाँ मिलाने लगी। वहीं सुमित घूर कर राधिका को देखने लगा और मन ही मन में राधिका की शिकायत करते हुए बोला कि कौन से मन से ये शादी के लिए मना कर रही है। पक्का ऊपरी मन से ये शादी के लिए मना कर रही है, वरना ये तो शादी के लिए मरी जा रही थी। दादाजी सभी बच्चों की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, वहीं नानी माँ भी एकदम शांत थी। तभी उन्हें अपनी सीढ़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। कोई और नहीं बल्कि अरमान और आस्था दोनों हाथों में हाथ डालकर एक साथ आ रहे थे। अरमान ने आस्था को भरपूर किस करने के बाद उसे छोड़ा और उसे शांत करते हुए कहा कि उसे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसकी बीवी है। क्योंकि अरमान आस्था को हर हाल में सिर्फ और सिर्फ प्यार करना चाहता था, उसे डराना नहीं चाहता था। लेकिन ना चाहते हुए भी अरमान की हरकतें ऐसी हो जाया करती थी कि आस्था डर के मारे कांपने लगती थी। अब आस्था अरमान के सॉफ्ट बर्ताव के बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का महसूस कर रही थी और अरमान ने जल्दी ही आस्था को नहलाकर उसे अच्छे से कपड़े पहना दिए थे और खुद भी तैयार हो गया था। आस्था के बालों को भी अरमान ने ही बनाया, बड़े ही प्यार से। अरमान आस्था की छोटी छोटी चीजों की देखभाल कर रहा था और जल्दी ही उसे लेकर वो नीचे आ रहा था और उसने आते हुए सारी बातें भी सुन ली थी कि किस तरह से रश्मि और राधिका शादी के लिए इनकार कर रही हैं।
कहीं न कहीं आस्था को इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसकी वजह से उन सब की शादी के फंक्शन इस तरह से खराब हो रहे हैं और बेचारी रश्मि दीदी की शादी का फंक्शन भी डिस्ट्रॉय हो रहा था। आस्था को बड़ा ही बुरा लग रहा था। वहीं नानी माँ ने जब आस्था को देखा, वो तुरंत दौड़कर उसके गले लग गई और फिक्र जताते हुए पूछती हैं, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? आस्था के हाथ पर ड्रेसिंग थी, इसीलिए अरमान ने उसे नहलाया था और उसके हाथ की पट्टी को बिल्कुल भी भीगना नहीं दिया था। डॉक्टर ने साफ साफ बोला था कि दो दिन तक उसके हाथ की पट्टी नहीं भीगनी चाहिए, इसीलिए अरमान ने बड़ी ही जेंटल वे में आस्था को नहलाया था। अब आस्था को जैसे ही अपने हाथ का नानी माँ के पूछने पर एहसास हुआ, आस्था, तू ठीक है? तब उसे अपनी चोट का एहसास हुआ था, क्योंकि वो तो भूल ही गई थी कि उसके हाथ में इस वक्त पट्टी लगी हुई है। और तब उसे अरमान का छूना, बेहद आराम और ईजी तरीके से नहलाना याद आया और वो अचानक से ही हल्का सा मुस्कुराते हुए उनका हाथ थामते हुए बोली, जी नानी माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप क्यों परेशान होती हैं? आस्था ने थोड़ा वही अपनी चहकने वाली आवाज में कहा था। आस्था की चहकती हुई आवाज सुनकर सभी खुश हो गए थे, लेकिन प्रियंका जल भुनकर राख हो गई थी। आस्था का चहकना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मन में उसे कोसते हुए सोचने लगी कि ये लड़की इतनी ज्यादा नॉर्मल कैसे हो सकती है। कहा तो इसके लिए दो दो आशिक मरने को तैयार थे और अब देखो ये लड़की कितना ज्यादा नॉर्मल बर्ताव कर रही है। लेकिन फिलहाल वो झूठी मुस्कुराहट के साथ आस्था से उसके हालचाल लेने लगी थी। रौनक ने अब आस्था को गले से लगाया। वहीं अरमान आस्था को छोड़कर एक तरफ जाकर नानी माँ और बाकी सब दादाजी और बाकी सबके साथ बैठ गया था और गंभीरता से बोलता है, ये शादी के फंक्शन डिले नहीं होंगे, शादी टाइम उसी मुहूर्त में होगी। वैसे भी अबीर सिंह राठौर को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। क्या हो गया? अगर हम उसकी जान नहीं ले सकते, लेकिन उसे मुंह तोड़ जवाब तो दे सकते हैं ना? अरमान ने बड़े ही जेंटल वे में कहा। सभी लोग अरमान की बात सुनकर मुस्कुरा उठे थे, क्योंकि अरमान जिस तरह से नॉर्मल वे में बात कर रहा था, तो ये उन लोगों के लिए काफी बड़ी बात थी और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि शायद अरमान का बिहेवियर अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन अरमान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो अरमान ही जाने। तब आस्था ने रश्मि और राधिका से माफी मांगते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिएगा रश्मि दीदी, राधिका दीदी, हमें नहीं पता था कि हमारी वजह से इतना कुछ हो जाएगा। और रश्मि दीदी, काश उस दिन हम उससे टकराए ना होते, तो शायद आज ये सब कुछ नहीं होता। तभी रश्मि ने आस्था को गले से लगाते हुए कहा, ना उस दिन हमारी कोई गलती थी और ना ही आज आस्था तुम्हारी गलती है। आस्था, तुम क्यों परेशान होती हो? और वैसे भी उस बात को मैं भूल चुकी हूँ। तुम्हें भी अपने बीते दिनों की बातें दिमाग से निकाल देना चाहिए। और डोंट वरी, अरमान सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा बोलकर रश्मि आस्था को सांत्वना देने लगी थी, तभी अरमान की आवाज आती है। वो बिना एक्सप्रेशन के बोलता है, चलो सबके सब एक साथ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमें ऑफिस जाना है। अब आस्था ऑफिस का नाम सुनकर थोड़ा सा घबरा गई थी, क्योंकि उसका इरादा बिल्कुल भी ऑफिस जाने का नहीं था। वो अरमान को ऑफिस के लिए मना करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती। लेकिन अरमान उसके मन की बात समझ गया और आस्था के इमोशंस को शांत करने के लिए बोला, आस्था, मैंने आपको चलने के लिए नहीं कहा है। आज आप घर पर आराम कीजिए, जब आप ठीक हो जाएंगी तब आप मेरे साथ ऑफिस चल सकती हैं। ऐसा बोलकर अरमान ने एक ही पल में आस्था का दिल हल्का फुल्का कर दिया था और आस्था के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। जल्दी ही अरमान सिंघानिया, टाइगर, मारिया के साथ ऑफिस के लिए रवाना हो चुका था। वहीं आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान चारों के चारों अरमान को जाते हुए देख रहे थे और तब उन्होंने सोचा कि उन्हें भी जाकर अपना अपना काम खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि सबका एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग काम था। ध्रुव को एक स्पेशल सर्जरी के लिए ही जाना होता था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई सर्जरी नहीं थी और इसी सोच के साथ उसने सोचा, क्यों ना आहान के साथ आगे शादी में क्या फंक्शन करने हैं या संगीत और उससे पहले पार्टी की तैयारी की जाए। लेकिन तभी ध्रुव के फोन पर उसके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक ईमेल आया, अर्जेंटली किसी की सर्जरी होनी थी। अब जैसे ही ध्रुव ने वो मैसेज देखा वो चौंक गया, क्योंकि सर्जरी कहीं और नहीं बल्कि बैंगलोर में ही होनी थी और फैमिली वालों की काफी रिक्वेस्ट भी थी। अब ध्रुव को समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि सर्जरी की जो डेट थी वो आकाश और रश्मि की शादी वाले दिन की ही थी। अपनी ऑफिशियल जीमेल आईडी का यूज करते हुए बोला कि वो उस दिन बिजी है, वो किसी और से सर्जरी करवा सकते हैं। लेकिन उधर से डॉक्टर का उसे मैसेज आया कि सर्जरी सिर्फ स्पेशलिस्ट ध्रुव ही कर सकते हैं और कोई नहीं। अब ध्रुव और सर्जरी किसी और की नहीं बल्कि एक बूढ़े व्यक्ति की होनी है। अब ध्रुव थोड़ी देर कुछ सोचता रहा और उसके बाद उसने सर्जरी के लिए हाँ कर दिया था, क्योंकि ध्रुव के लिए किसी की जान बचाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था।